आज हम तिमोथियुस के आखिरी भाग में पहुंचे हैं, पहला तिमोथियुस, और अब हम तिमोथियुस में इसके बाद रुकेंगे और प्रभुचा अगले संडे से हम क्रिसमस की सीरीज को शुरू करेंगे। 3-4 संडे निरंतर रीति से क्रिसमस की सीरीज को शुरू करेंगे। सो आज हमारा पहला तिमोथियुस का 6 अध्याय है। बीच में मैंने कुछ पैसेज छोड़ दिया था, पिछली बार कुछ भाग छोड़ दिया था, और उस भाग को हम कवर करना चाहेंगे। और सच है, खास बात तिमोथियुस को पौलुस क्या लिख रहा है, पौलुस तिमोथियुस को खास बात क्या लिख रहा है, एक बात क्या बात जो हमने शुरू से देखी है एक कलीसिया के बारे में, जो एक कलीसिया है, हेल्दी चर्च इज अ गॉस्पल सेंटर चर्च। एक स्वस्थ कलीसिया सुसमाचार पर आधारित होती है। यह पूरा मुख्य उद्देश्य है पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा है। और अगर उस सुसमाचार पर आधारित है तो फिर सुसमाचार पर आधारित होते हुए सेवक कैसे होने चाहिए, सुसमाचार आधारित होते हुए विश्वासी कैसे होने चाहिए, सुसमाचार आधारित होते हुए झूठे सुसमाचार को कैसे में समझना है, परखना है और उसे कोई समझौता नहीं करना है, और झूठे शिक्षक झूठे सुसमाचार प्रचारक हमें कहां भ्रमित कर सकते हैं, ये सारी चीजें पौलुस लिख रहा है। और हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से ये इफिसस की कलीसिया में पौलुस ने तिमोथियुस को सेवक करके अपॉइंट किया था, रखा था, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और तब हम सारे क्रम से देखते हुए आगे बढ़े थे, बहुत सारी चीज़ों पर हमने समय विचार किया था, 4-5 संडे लगातार। और जब पिछले संडे में थे 6 अध्याय में, तो मुख्य बात ये थी, क्योंकि ना तो संसार में हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। और अय्यूब भी इसी तरह की बात कहता है, अय्यूब उसके पहले अध्याय उसके किस पद में, मैं खाली हाथ आया, कहता है मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला और मैं नंगा ही चला जाऊंगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा। और अगर मैं ऐसी है संसार में तो धन से मेरा संबंध क्या होना चाहिए, धन मेरा सेवक बनकर रहेगा या धन मेरा स्वामी बनकर रहेगा। और एक विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए धन उसका सेवक बनकर रहना है, एक विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए धन स्वामी नहीं बनना, धन को प्रभुता नहीं करना। ये हम पिछली बार बहुत विस्तार से कई सारी बातों को हमने देखा था। और जब हम देख रहे थे तो हमने इस बात पर विचार किया था, दो चीज थी, यदि कोई धनवान होना चाहता है तो उसको क्या करना है, यदि उस इस संसार में जो धनवान है उनको क्या करना है। और तब एक खास बात थी, संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। पहला तिमोथियुस 6 अध्याय उसका 6 पद, संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। अर्थात एक मसीह, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति जो इस बात का दावा करता है, मैंने सुसमाचार को सुना है, मैंने सुसमाचार को जाना है, मैंने सुसमाचार को ग्रहण किया है और मैं सुसमाचार का अनुसरण करता हूं, मैंने सुसमाचार को सुना है, मैंने सुसमाचार को जाना है, मैंने सुसमाचार को ग्रहण किया है और मैं सुसमाचार का अनुसरण करता हूं, अगर सुसमाचार मेरे जीवन में है तो क्या मेरा जीवन एक सच में भक्तिपूर्ण जीवन है, क्या मेरे लाइफ गॉडली लाइफ है। इस बात को बहुत सुंदर पिछली बार हमने विस्तार से देखा था। लेकिन जब आज हम आगे बढ़ते हैं तो आज का मुख्य है पौलुस का अंतिम निर्देश एवं परमेश्वर की प्रशंसा। हमने प्रकाश वाक्य उसके 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ा। प्रकाश वाक्य में 2 अध्याय सुंदर अध्याय है, 4 अध्याय और 5 अध्याय, और 4 अध्याय में परमेश्वर की प्रशंसा योना देखकर करता है, 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र की प्रशंसा, बहुत बढ़िया। और वही चीज आज हम इसमें भी देखते हैं, जब वो अंतिम कर रहा है तो किस प्रकार से परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। तो दो बात को आज हम देखना चाहेंगे, पहली चीज जो पौलुस तिमोथियुस को और विश्वासियों को एक अंतिम निर्देश दे रहा है कि किस प्रकार से पौलुस कह रहा, तिमोथियुस तूने सारी बातों को सुन लिया है, तूने जान लिया है कि एक मसीह का एक भक्तिपूर्ण जीवन कैसा होना है, एक विश्वासी का भक्तिपूर्ण जीवन कैसा होना है, तूने जान लिया कि धन के बारे में क्या कुछ करना है, तूने जान लिया कि झूठे शिक्षक है, झूठे प्रचारक है, झूठे सेवक है किस प्रकार से मनुष्य को भरमाते हैं पैसे के मामले में, धन के मामले में, और वो उनको किस प्रकार से झूठा निश्चयता दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं, ओ धन ही सब कुछ है, धन सब कुछ नहीं है, धन जरूरत है, धन परमेश्वर देता है, परमेश्वर कहता है धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, परमेश्वर में कंगाल बनकर रखना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, हमें धन कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कैसे हमारा मन, हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा जो एक कारण कहना चाहिए, हमारी लालसा क्या रहती है, हम किस प्रकार से उसको अपने जीवन में लेना चाहते हैं। हम ऐसे देश में हैं जहां हर चीज के लिए अलग अलग लोग उपासना और पूजा करते हैं। बुद्धि चाहिए, सरस्वती की पूजा करो, धन चाहिए लक्ष्मी की पूजा करो, बल चाहिए हनुमान की पूजा करो। हम ऐसे में हम उस पर विचार पर ज्यादा नहीं आते, और मनुष्य संसार का आज इसी रीति से लगा हुआ है, लेकिन बाइबल कुछ और कहती है हमारा जीवन, क्योंकि हमारा जीवन केवल इसी संसार का नहीं है, इसी संसार का। और पौलुस जब इन बातों को लिख रहा है इन पदों में, तो इन चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा है, और जो मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी कि मैं और आप इस बात को समझ जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, संदेश को सुनते हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, एक इच्छा जागृत, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए और ये चीज मेरे अंदर डाल दीजिए, मेरे अंदर उत्पन्न करिए, मुझे इस चीज की लालसा दीजिए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, और इसके लिए हमें प्रयास करना है, और तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 11-12 पद में और 20-21 पद में तिमोस को पौलुस के द्वारा कुछ चेतावनी है, चेतावनी कह दीजिए या निर्देश कह दीजिए, पौलुस के द्वारा तिमोथियस को 11-12 पद और 20-21 पद में। तब 15-16 पद में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, लेकिन 13-14 पद में प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण का वर्णन करता है। प्रभु यीशु मसीह आया, आएगा, दो चीज वो लाता है सामने, प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या करा, अब आएंगे तो क्या होगा, इन दो चीजों को वर्णन करता है 13-14 पद में। तो हम इस विस्तार से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए मैं साथ निकालिए, पहला तीन 6 अध्याय मैं पढ़ूंगा कुछ पद को, 11 पद, परंतु हे परमेश्वर के जन, संबोधन क्या कर रहा है, हे परमेश्वर के जन। पौलुस तिमोथियस को मसीह में अपना पुत्र भी कहता है, पौलुस तिमोथियस को अपना सहकर्मी भी कहता है, लेकिन यहां पर यह संबोधन कर रहा है पर हे परमेश्वर के जन। बाइबल में कुछ ही विशेष लोगों को ये नाम से संबोधित किया गया है, समय नहीं कि हम उधर जाएं, पुराने नियम में 5 लोग हैं जिनको इस तरह संबोधित किया गया है, परमेश्वर के जन, जिसमें मूसा है, दाऊद है, एलिया है, इस तरह से करीब 5 लोग हैं जिनके लिए संबोधित किया गया है। एक विशेष नाम से वो संबोधित कर रहा है, क्या मतलब है, वो सारी बातों को सिखाने के बाद इस शब्द के साथ वो कह रहा हूं, क्या सकता था, हे तिमोथियस तो मेरे साथ सुषमाचार में सहभागी रहा, हे तिमोथियस तो मेरा आत्मिक पुत्र है, हे तिमोथियस तूने मेरे लिए जोखिम उठाया, नहीं, वो क्यों इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा परंतु हे परमेश्वर के जन, तिमोथियस अब तू संसार का व्यक्ति नहीं है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का विशेष जन है, परमेश्वर ने विशेष अभिप्राय से तुझे अलग किया है, ना केवल तुझे बचाया है, ओ तूने एक दिन परमेश्वर के वचन को सुना, तेरी नानी के द्वारा तूने विश्वास तेरे जीवन में डाला गया और तू आगे बढ़ा, अब तू परमेश्वर की सनातन योजना में एक मुख्य रूप से चुन करके अलग किया हुआ है, परमेश्वर की दृष्टि में तू एक मुख्य व्यक्ति है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर शब्द है जो मेरे और आपके लिए है, कितना अच्छा हो कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर का जन समझ सके, कि परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर कृपा की है, अलग किया है, चुना है, विशेष अभिप्राय से, विशेष योजना से, विशेष जीवन के लिए, विशेष कार्य के लिए। कितना अच्छा हो कि हम इस बात पर क्यों सोच सकें, और जब हम इस बात को देखें, हां मैं परमेश्वर का जन हूं, आप सोचें आप परमेश्वर के जन हैं, सो ये सोच मेरे और आपके मस्तिष्क को, सोच को, इच्छाओं को, विचारों को, सब कुछ को एकदम परिवर्तित कर देगी। और पौलुस आगे बढ़ने से पहले इस शब्द के साथ संबोधित कर रहा, हे परमेश्वर के जन। अब क्या करना इस परमेश्वर के जन को, 5 बातें हैं वो इस 11-12 पद में और 20 पद में कहता है, 5 बातें हैं जो इस बात को कहता है। वो पहले कहता है, पहला पहली बात है भाग, दूसरी बात कहता है पीछे कर, तीसरी बात कहता है कुश्ती लड़, चौथी बात कहता है पकड़े रहे, पांचवी बात कहता है उसकी रक्षा कर। अभी हम एक क्रम से इसमें जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहली बात 11 पद में भाग, क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। किन बातों से भाग? जिनको मैंने तुझे समझा दिया है, मैं समझा चुका हूं कि तू धन के लोभ में मत रहना, मैंने तुझे समझा दिया है झूठे शिक्षकों के बहकावे में ना आना, मैंने तुझे समझा दिया है झूठे सुसमाचार के पीछे मत भागना, मैंने तुझे समझा दिया है कि उनसे तू अलग रहे और तू भाग। मतलब वो कह रहा है कि तू इससे दूर रह। जब हम भाग शब्द का इस्तेमाल सोचते हैं तो एकदम से पुराने नियम में एक स्थल याद आता है जहां यूसुफ अपने आप को अपवित्र होने से या पाप में गिरने से अपने आप को बचाता है और भागता है। आप जानते हैं उस कहानी को किस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक में, जब वो पितरपुर की पत्नी उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ गलत करना चाहती थी, लिखा है कि और वो वहां से भाग गया। ठीक इसी तरह का चित्रण है कि हमें इन संसार से, संसार की चीजों से अपने आप को वहां से हटाना है, अलग करना है, भागना है। इनकी परछाई में हमारे पर नहीं पड़नी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारे जीवन में, हमारी इच्छाओं में, हमारी लालसाओं में, हमारे भावनाओं में, हमारे कामों में, ये चीजें किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। और मेरे प्रियो, ये ऐसी चीज है कि धीरे 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 हमें दबा देती है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, कई बार यहां बोल चुका हूं और मैं दोहराता हूं कई बार, अब तो नहीं है, पहले पुराने समय में गांव में खटिया बहुत चलती थी और लोग खटिया में बैठते थे, कटोले में बैठते थे, खटिए की पट्टी बहुत अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन उन पट्टियों के अंदर कई बार पता नहीं चलता था, अंदर अंदर घुन लगता था या कीड़े अंदर अंदर लकड़ी के अंदर, और वो धीरे धीरे उस लकड़ी को अंदर 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 से काटता। बाहर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, साफ सुथरी है, मजबूत है, चमकदार है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, उसको घुन खा रहा है। आपको बैठा दिया, आप आइए बैठिए, चादर बिछा दी, सब कुछ, आप जैसे बैठे खटिया का वो पट से टूटा, आप नीचे धड़ाम से गिरे। दिख तो बहुत अच्छी रही थी, दिख तो मजबूत था, चमक रहा था, सब कुछ था, लेकिन अंदर कोई चीज थी जो उसको खा रही थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। और मेरे प्रियो, कई बार संसार और संसार की चीजें हमें इसी तरह से अंदर अंदर घुन की तरह खाती हैं। और मुझे और आपको सचेत और सावधान होना है, जागृत रहना है और प्रार्थना करना, विचार करना है, आज सुबह क्या कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर अंदर घुन के समान खा रही है? कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई लालच, कोई जलन, कोई सुस्ती, कोई आलस, कोई लापरवाही, कोई चीज है जो अंदर अंदर आपको खून की तरह खा रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ सुधार है, लेकिन आप नहीं जानते किस समय वो टूट जाए और आप हानि के कारण हो जाए। और पौलुस यहां पर तीमोथियुस कह रहा, तीमोथियुस तू सावधान रहे, तू भाग, जो तूने सुन लिया है, सीख लिया है, समझा दिया मैंने सब कुछ, उन बातों से तुझे अपने आप को भागना। और मुझे और आपको इस संसार में झूठे शिक्षकों से भागना है। मत जाइए इन बड़ी बड़ी मीटिंगों में, आश्चर्य करने वाली मीटिंग में, आओ हम तुम्हें आश्चर्य कम दिखाएंगे, मत जाइए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु कहता है जब वो मेरे सामने खड़े होंगे और मुझसे कहेंगे कि मैंने तुम्हारे नाम से ही क्या ये क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। लोग जानते हैं, संसार जानता है, सब कुछ जानता है, बड़े बड़े पोस्टर छपवाए हैं, सब कुछ करा, दुनिया जान रही है, डंडोरा पीट रही है, भीड़ की भीड़ उनके पीछे लग रही है, लेकिन यीशु समय कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये बहुत दुखदायी बात होगी। और मेरे प्रियो, सावधान रहे ऐसे लोगों से जो आपको झूठे सुसमाचार के प्रलोभन में ला सकते हैं, जो आपको धनवान बनने का ख्वाब दिखा सकते हैं, जो आपके विश्वास को डामाडोल कर सकते हैं। मेरे प्रियो, उनके पीछे मत जाइए, उनके स्थान से भाग जाइए। स्पष्ट कहता है पौलुस, कह रहा है तीमोथियुस भाग। तब आगे चल के दूसरी बात कहता है भाग, और क्या कर, किस चीज का पीछा कर, कुछ बातें जिसका, छह बातें जिसके लिए पीछा करने का कह रहा है, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य, नम्रता का पीछा कर। कुछ जगह भागना है, एक तरफ इससे भागना है, लेकिन इसके पीछे जाना है। इससे भागना है संसार और संसार की चीजों से भागना है, लेकिन प्रभु और प्रभु के गुणों से, प्रभु की धार्मिकता से, प्रभु की पवित्रता से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु की भक्ति से, इसके पीछे भागना तुझे जाना है। दोनों जगह नहीं भाग सकते आप, दोनों जगह नहीं चल सकते। आपको एक ही चुनाव करना है, या तो इसके पीछे भागेंगे या इसके पीछे चलेंगे। शब्द का ध्यान रखिए, वो कह रहा है इसका पीछा कर, इससे भाग। संसार की चीजों से अपने आप को शीघ्रता से आपको अपने अपने आप को अलग करना है, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता है, धीरे धीरे उसको पीछे करते 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 आगे बढ़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पचिन्ह तो हम चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास सारी चीज थी, प्रभु यीशु मसीह में भक्ति थी, प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता थी, धैर्य था, प्रेम था, विश्वास था, सारी चीजें थी इनके पीछे। और प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलकर उसने मेरे और आपके लिए अपने पद चिन्ह दे दिए, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। मेरे विश्वासी भाई बहनों, जवान बच्चों और बेटी बेटों, ये सच है। कह रहा है कि इनका पीछा कर, धार्मिकता का, धार्मिकता, वो धार्मिकता जो परमेश्वर का गुण है। धार्मिकता क्या है? पहले उसके राजा धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। धार्मिकता परमेश्वर का गुण है, धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है, धार्मिकता परमेश्वर का मन है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमें पाप से छुड़ा करके और अधिक पवित्रता में प्रवेश कराता है। हम एक दिन धार्मिकता को नहीं जानते थे, हम तो पाप में थे, पाप में नाश हो रहे थे, और हमारे जीवन में पूरी रीति से हमारा उठना बैठना चलना फिरना पाप था, अधर्मी थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। रोमियों के 5 अध्याय में बहुत सुंदर रीति से पौलुस वर्णन करते हुए लिखता है, कहता है हम तो उसके शुरू से उसके बैरी थे, शत्रु थे, पाप में थे, अधर्मी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले होकर प्रेम किया है, और वो मन उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आ गया और उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ताकि उसके उस बलिदान पर मैं और आप विश्वास कर सके, और उस विश्वास करने द्वारा उसकी धार्मिकता मुझे और आपको मिल जाए। विश्वास के द्वारा मुझे और आपको उसकी धार्मिकता प्राप्त हुई है। अब वो धार्मिकता जो मुझे और आपको मिली है, अब उस धार्मिकता में मुझे दिन पर दिन बढ़ना है, आपको दिन पर दिन बढ़ना है। अर्थात क्या मतलब? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जो प्रभु यीशु मसीह गुण है, उसमें बढ़ना है। और इसीलिए कहता है पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। हमें खोज करना है, प्रभु आपकी धार्मिकता कैसी है? उसके वचन में, उसके पवित्र आत्मा साता में, उसके लोग इस सच्ची संगति में हम इसमें प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। कहता है तब कहता है, और ना केवल लेकिन भक्ति, बार बार हम भक्ति है। और पौलुस इस तिमोथियस को लिखते हुए बार बार भक्ति का शब्द इस्तेमाल करता है, गॉडली लाइफ, गॉडली लाइफ, गॉडली लाइफ, बार बार भक्ति का जीवन इस्तेमाल करता है। ये सच है, कहता है भक्ति का भेष तो बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने वो भक्ति नहीं जो बैठ करके अपना आराम से कुछ कुछ करना है या करना है, बैठ करके आंख बंद करके कुछ, वो भक्ति की बात नहीं कर रहा है। वो भक्ति जिसके जिसमें होकर हम परमेश्वर में लीन रहते हैं, परमेश्वर में रहते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है। मेरे प्रियो, कह रहा है विश्वास केवल हमने उद्धार के लिए विश्वास नहीं पाया। मैं अक्सर बोलता हूं एक सेविंग फेथ है और एक लिविंग फेथ है। सेविंग फेथ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करी है, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्वास के द्वारा मुझे और आपको उद्धार प्रदान किया, पापों की क्षमा प्रदान की है, धार्मिकता प्रदान की है। लेकिन लिविंग फेथ यह है जो दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन में उस विश्वास में बढ़ते हुए अनुभव करते हुए मैं आगे चलता चला आता हूं। और पौलुस कहता है कि और धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। जैसे उसने अब्राहम का उदाहरण दिया, उसकी कितनी लंबी यात्रा थी, मूसा का उदाहरण दिया, उनकी कितनी लंबी यात्रा थी, लेकिन क्या करा उन्होंने? उनके दैनिक जीवन में विश्वास दिखाई दे रहा था। संघर्ष आया, कठिनाई आई, समस्या आई, विरोध आया, शत्रुता आई, बहुत कुछ हुआ, जीवन में उतार चढ़ाव, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं, वो विश्वास में बने रहे और विश्वास में बढ़ते रहे। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको उस विश्वास में बढ़ते रहना है, हमें उस विश्वास का पीछा करना है। प्रभु यीशु मसीह की दया में होकर, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर, कहता है प्रेम, धैर्य, नम्रता का पीछा कर। ना केवल तीसरी बात तो कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्या मतलब है? पहलवान नहीं बनना, मुझे जाके अखाड़े में जाके नहीं लड़ना। वो ये नहीं कह रहा है कि तू जितने भी लोग हैं झूठे जाके उनसे लड़ाई कर, लड़ाई करने की बात नहीं हो रहा। क्या मतलब है? विश्वास एक संघर्ष है, फेथ इज अ स्ट्रगल। जब हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, दिन प्रदिन हमारे जीवन में संघर्ष होता है। प्रैक्टिकल उदाहरण के लिए, मैं कई बार हमारी कोई आवश्यकता है हमारे जीवन में, और हम उस समय प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लोग सिखाते हैं, अच्छा तुम धीरज धरो, विश्वास करो, तुम्हारी प्रभु अपने समय पर पूरा करेगा, उपाय करेगा। लेकिन क्या होता है, हम उसको बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, और जल्दी प्राप्त करते हुए हम संघर्ष नहीं करते, हम स्ट्रगल नहीं करते, हम एकदम से तुरंत किसी न किसी से प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे हमारे को झूठ बोलना पड़े, चाहे हमको छल करना पड़े, चाहे हमें धोखा देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें चाहिए। आप देखते हो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चों को कोई चीज चाहिए होती तो क्या करते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक उनको मिल नहीं जाता वो चैन नहीं लेते। कई बार ये मसीह विश्वासी जो परिपक्वता में हम नहीं रहते, हम भी ऐसे ही करते हैं, हमें चाहिए बस, हाँ दुआ कर लेंगे, अभी बात के हम दुआ कर रहे थे इसलिए मिल गया, लेकिन वास्तविक आपने क्या क्या प्रयास किए उसके चारों ओर देखिए, किसी को पत्र लिखा, किसी के पास जाके रोए, झूठ बोला, कुछ और करा, किसी का मार लिया, किसी लेने के बाद दिया नहीं, ये सब कुछ क्यों? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ भी लर्निंग संघर्ष का है आपके जीवन में लड़ना है। मन तो कुछ और कहता है, मस्तिष्क कुछ और कहता है, विश्वास कुछ और कहता है, और वहां एक द्वंद रहता है, एक द्वंद रहता है। और एक विश्वासी का जीवन, अगर आपके जीवन में द्वंद नहीं है, संघर्ष नहीं है, इस आयु में भी मुझे प्रतिदिन परमेश्वर में होकर, परमेश्वर की दया के साथ मुझे होकर आज भी अपने विश्वास के लिए बहुत सारी बातों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या मैं इससे इस तरह से बदला ले लूं, क्या मैं शांत रहूं, क्या मैं कुछ करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं, संघर्ष करना पड़ता, आसान नहीं होता। मन मस्तिष्क विचार भावनाएं इच्छाएं सब कुछ चलनी पड़ती हैं, और कह रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, वो बहुत सुंदर कह रहा है विश्वास की कुश्ती न लड़, केवल कुश्ती न लड़, क्या कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़। एक तरीके से जबकि एक अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाता है तो पौलुस ये भी वर्णन करता है कि वो अखाड़े में तैयारी के साथ जाता है। हमें तैयार करने वाला कौन है? हमारा तैयार करने वाला हमारा मास्टर प्रभु यीशु मसीह है, उसका पवित्र वचन है, उसका पवित्र आत्मा है, उस पर डिपेंडेंस, उस पर निर्भरता है, उसके ऊपर। और ये है ना, तब आगे चल के कहता है उसके पीछे का कर, तब तीसरी बात कहता है अनंत जीवन को पकड़े रहे। किसको थामे रहना में? अरे हमारे निर्बलता के कारण, हमारे अविश्वास की कमी के कारण ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से अनंत जीवन निकल जाए, उसको थामे रहे, हिलने ना पाए। हम कहीं बाहर चलते हैं, बच्चे के हाथ में 5 रुपए रख दिया और हम कहें गिरे ना, तो कहते हैं बेटा इसको पकड़ के जबरदस्त अच्छी तरह से पकड़ के रखना। अच्छा थोड़ी देर बाद पूछते हैं बेटा पकड़े हो ना कि गिरा दे, हम आ जाने गिराए ना, और हम बार बार कहते हैं पकड़े दे, अच्छे से पकड़े दे, अच्छे से पकड़े दे। ये तो एक साधन सी चीज है, व्यवहारिक रहते थे। ठीक इसी तरह से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि जो विश्वास एक दिन हमने किया था, आगे हम कुछ और देखेंगे उस बात पर, जो एक दिन विश्वास किया था उस विश्वास को हम पकड़े रहे। कैसे? जोश में आकर हमने विश्वास कर लिया, सबके सामने खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद क्या, क्या आज विश्वास बना हुआ है? क्या विश्वास बना हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास को पकड़े रहे अनंत जीवन, वो जीवन जो मरने के बाद जीवन है। मेरे प्रियो, केवल बाइबल में और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और कहीं अनंत जीवन नहीं है। ये सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ा खजाना है, अनंत जीवन का खजाना, जो संसार में कोई नहीं दे सकता। केवल बाइबल दे सकती है, प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। संसार में सारी चीज मिल सकती है, लेकिन अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन इसीलिए कहता है यदि मनुष्य सब कुछ को प्राप्त करे और अपने प्राणों के आने जाए अर्थात अपने अनंत जीवन को नाश करे तो कुछ नहीं। मेरे प्रियो, कितना आप प्रयास कर रहे हैं कि वो अनंत जीवन आपके हाथ से खोन न पाए? और तब वो कहता है जिनको पकड़े, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। अब यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए, वो कह रहा है जिसके लिए तू, तुझे किस बुलाया गया? परमेश्वर ने तुझे उद्धार क्यों दिया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तूने अनंत जीवन के लिए तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तूने गवाही दी थी। क्या गवाही दी? जब तूने विश्वास किया तब तूने जाकर बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के सामने विश्वासी लोग खड़े थे और उस लोगों के सामने कहा, आज से मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, अब मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, संसार का इनकार नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसके पीछे चलूंगा। और मैंने उस अनंत जीवन की, उस उद्धार की साक्षी सबके सामने दी थी, चाहे से 5 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, चाहे 40 साल पहले, चाहे 50 साल पहले। आपको याद है आपने कब गवाही दी थी? कौन सा दिन था जिस समय आपने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेते समय आपने सबके सामने खड़ों के साक्षी दी थी, हाँ मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। और अनंत जीवन का निश्चित को आपने वर्णन किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज काम क्या? क्या वो जोश, क्या वो समर्पण, क्या वो प्रतिज्ञा, क्या वो वाचा आपकी आज भी बनी हुई है? एक कदम आप आगे बढ़ गए या शिथिलता आ गई? कहीं कहीं ना कहीं पीछे हट गए, कहीं सारे इधर उधर देखने लगे, या उस चीजों पीछे छोड़ करके आप संसार के पीछे भागने लगे? वो कहता है, वो कह रहा है, जिसके लिए तू बुलाया गया है, तू अनंत जीवन के लिए बुलाया है, तुझे परमेश्वर अपने संतान होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर तुझे अपने उद्धार के लिए बुलाया है, तूने परमेश्वर तुझे सुसमाचार के बुलाया है, सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया है, जिसके लिए बुलाया है, जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सामने दी। मैं सबके जीवनदाता परमेश्वर और मसीह की उपस्थिति में, अब यहां पर कहता है, कह रहा है उन सबके उपस्थिति में तुझे ये बातें स्मरण दिला रहा हूं। किसके? वो यीशु मसीह की है। पहली बात वो कह रहा है 13-14 पद में, मैंने कहा था 13-14 में दो बातें, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आएगा। अब यहां पर पौलुस क्या कह रहा थी, उसको कह रहा है मैं सबके जीवनदाता परमेश्वर और यीशु मसीह, यीशु की उपस्थिति में, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र की उपस्थिति में, तो ये किस में रहा हूं? कौन है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? वो कह रहा है उपस्थिति में, जिसने पिंतुस पिलातुस के सम्मुख उत्तम साक्षी दी। कौन थे? यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए, पिलातुस के सामने खड़े थे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू यीशु है? उसने कहा तू खुद कह रहा है। उसने उनके सामने इस बात की साक्षी दी कि यहां सच में वो परमेश्वर की ओर से इस संसार में विशेष अभिप्राय, विशेष योजना से आया है। वो आ चुका, उसकी साक्षी दी जा चुकी है, उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लोगों ने जान लिया है, उसको लोगों ने सुन लिया है, उसने अपने उस कार्य को पूरा कर दिया, वो कार्य जिसको करने के लिए आया और जिसको पिलातुस ने और पिंतुस पिलातुस ने देखा है, सुना है, जाना है, जिसकी गवाही दी जा चुकी है। और वो ना केवल ये, लेकिन उसने बलिदान, अपने आप को बलिदान किया है। वो कह रहा है तो वो उस यीशु मसीह के बारे में कि जिसकी उपस्थिति में किए है, कह रहा है तुझको यह दृढ़ आज्ञा देता हूं। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया है, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के सामने, पिलातुस के सामने जब वो खड़ा था, पिलातुस ने इसको जान लिया कि यीशु कौन है, और इसलिए पिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया, अपने हाथों को धो लिया। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में किया गया आप जानते हैं किस रीति से क्या हुआ, और इसीलिए पत्रस भी वर्णन करता है कि उसने पिलातुस पिलातुस के समय में दुख उठाया। जब हम कलीसियाई स्टेटमेंट ऑफ फेथ को पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है और यहां पर यही वर्णन है। तब दूसरी बात क्या कह रहा है, ठीक है वो आ चुका है और वो अब आ चुका है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, उसने अपना कार्य तेरे जीवन में किया है, उसने अपनी शिक्षा को तुझे दिया है, उसने सुसमाचार तेरे सामने स्पष्ट किया है, उसने सब कुछ करा है, वो आ चुका है और उसको तूने जाना है, उसकी तूने गवाही दी है, तूने विश्वास किया है, तूने दूसरों सामने गवाही दी है, क्योंकि यीशु आ चुका है, यीशु ने अपना उद्धार का कार्य पूरा किया है, यीशु ने तुझे बचा लिया है, यीशु का अभिप्राय तेरे जीवन में पूरा हुआ, वो हो चुका है। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन में लागू होता है। जिस दिन मैंने और आपने उस पर विश्वास किया, जिस दिन मैंने और आपने खड़े होकर लोगों सामने साक्षी दी, अब आगे क्या है? तब आगे चल के क्या कहता है? कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, प्रकट होने तक, अभी ये द्वितीय आगमन है उसका, वो आ चुका, आकर उसने अपना कार्य पूरा कर दिया है, और इसलिए तिमोथियुस तूने जान लिया है, और इसलिए तुझे अपने विश्वास को थामे रहना है, तुझे अपने धार्मिकता में बढ़ना है, तुझे अपने भक्ति में बढ़ना है, तुझे प्रेम और धैर्य में बढ़ना है, ये सब कुछ करना है, क्योंकि तूने अनंत जीवन को पा लिया है और उस अनंत जीवन को कोई भी चीज छीन ना पाए, ना दिन धन छीन पाए, ना झूठी शिक्षा छीन पाए, ना झूठा सुसमाचार छीन पाए, ना संसार छीन पाए, कोई तुझको भरमाने ना पाए, कोई तुझको भटकाने ना पाए। तू उसको थामे रहना, तू उसको पकड़े रहना, तू उसके पीछे चलना, उसको पाने के लिए ललायित रहना। वो जो प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए कर दिया है, अब क्या है? अब वो फ्यूचर की बात करता है, भविष्य की बात करता है। अब वो कहता है कि, वो आगे कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक व निर्दोष रूप से पालन कर। कब तक? अब जब प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे और मुझे और आपको उसके सामने खड़ा होना है। तिमोथियस, वो कार्य तेरे जीवन में पूरा हुआ है, तुझे उसको थामना है, प्रभु ने तेरे जीवन में काम करा है, लेकिन जब इस यात्रा में तुझे अपने आप को थामे रहे, आगे बढ़ा, क्योंकि अब एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और आएगा तो संसार का न्याय करेगा, तेरा भी न्याय करेगा, हमारा भी न्याय करेगा। और मेरे प्रियो, प्रश्न यह है कि जो मैंने और आपने विश्वास किया, क्या हम उसको इस तरह से थामे हुए कि अगर कल प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ सामने सिंहासन के सामने खड़े होने के तैयार हैं? क्या हम अपने विश्वास को इस तरह से थामे हुए कि अगर कल यीशु मसीह आ जाए या मुझे और आपको इस संसार से जाना पड़ जाए तो हम उस विश्वास को और आनंद जीवन को थामे रहे और तब परमेश्वर सामने खड़े हों तो प्रभु यीशु मसीह कहे, मेरे शाबाश, मेरे दास और दासी, तो थोड़े में विश्वास होगा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी ठहराऊंगा। तो थोड़े में विश्वास होगा, थोड़े में विश्वास। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने मुझे और आपकी तैयारी अपने भविष्य के लिए करनी है। अपने में संसार तैयारी करता है भविष्य के लिए, केवल पृथ्वी की चीजों के लिए, अपने जनरेशन के लिए, चार पीढ़ी पांच पीढ़ी तक के लिए, वो सब नाश हो जाती हैं, अब बिल्कुल नाश हो जाती हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पिछले संडे प्रचार करता, पिछले हफ्ते हम कल रात में नेपाल से आए, वहां पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और जब वहां विश्वासी की मैंने दशा दी देखी, मेरे हृदय में बहुत आंसू था और मैं देखने लगा, सोचने लगा, मैंने हम आंटी और हमने बात करने लगे, ये लोग आर्थिक रीति से कितने कमजोर हैं, इनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, झोपड़ी है, लेकिन फिर भी वो एक पास्टर जिसने अपने अपने घर में झोपड़ी में रहा, अपनी जमीन को दे करके वो आराधना के लिए उसने चर्च बनाया, जैसे भी कैसे बनाया, किसी अपने झोपड़ी में रहना। हम अगर अपने जीवन को देखते हैं तो हम कहां हैं आज? ये लोग कौन लोग हैं? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आनंद जीवन को थामा है, जो कल प्रभु जब आएगा तो प्रभु के मुख से उनके लिए जो शब्द निकले जाएंगे, शायद हम में से कितने लोग हैं वो नहीं सुनने पाएंगे। प्रभु दया करे। और वो यहां पर कहता है, प्रकट होने तक निष्कलंक निर्दोष बना रहे, ये तेरा काम है, ये तेरी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हर प्रकार से वो अपने जीवन में इस प्रकार से प्रयत्नशील रहे कि वो निष्कलंक रहे और निर्दोष रहे। कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, प्रभु जी आज दिन भर आप मुझे निष्कलंक और निर्दोष बनाए रहिएगा, मेरे वो बातचीत में, मेरे खाने पीने में, मेरे बोलने चालने में, मेरे कार्य में, मेरी मित्रता में, मेरे व्यवहार में, मेरे लेन देन में। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज दिन भर मुझे आप निष्कलंक निर्दोष बनाए, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं अपने आप में नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे आपकी जरूरत है, मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें कि मैं आपके दृष्टि में निष्कलंक और निर्दोष पाया जाऊं। मेरे प्रिय, हम जो प्रचार कर रहे हैं और जो प्रचार सुन रहे हैं, हमारे पास कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में बहाना नहीं होगा, और इसलिए मुझे और आपको और गंभीरता से अपने जीवन को व्यतीत करना है डरते और कांपते हुए। ये झूठी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य बातें हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है एक एक बिंदु पूरा होगा, इसलिए जब वचन सुनते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करते साथ गंभीरता से लें, भय माने और परमेश्वर का भय मानते हुए उसका पालन करने तत्पर तैयार हो। वहीं तो विश्वास का संघर्ष है, वहीं तो विश्वास में संघर्ष करना है। और तब आगे चल के अब ये क्या कहता है, ठीक है वो आने वाले निष्फल 15 पद में, अब वो परमेश्वर के, परमेश्वर कौन परमेश्वर है? जैसे हमने यौना उसके 4 अध्याय में देखा, मैंने कहा यौना 4 अध्याय और 5 अध्याय में वर्णन करता, अब ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह जिसने, पौलुस कह रहा है, जिसने तिमोथियुस तुझे जीवन दिया है, जिसने तुझे अनंत जीवन दिया है, जिसने तुझसे चाहा तू अपने जीवन को इस प्रकार से बनाए रख, वो कौन है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं जम करूंगा थोड़ा सा, 20 और 21 पद में आऊंगा, तब फिर 15 में आएंगे, 20 पद में पांचवी बात, हे तिमोथियस जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। क्या कर? रक्षा करना है, देखभाल करना है। मैं पहले भी शायद आपको साथ शेयर कर चुका अपने जीवन के अनुभव में, हम बारह मुख्य में जब हमने सेवा शुरू करी थी, जिस मकान में हम रहते थे, यहाँ पर हमारी आराधना होती थी, बगल में पंडित जी थे, बाबा था, उनका मंदिर था, सब कुछ, और कुछ उनके साथ गांव में बहुत बवाल हो गया, और उनको वहाँ से अपने घर से अपने आप को बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए भाग कर जाना पड़ा। और उन्होंने एक लाल पोटली बनाई, बहुत बड़ी पोटली बनाई, और जाते जाते मेरे हाथ में रख दी। कहने लगे, भाई साहब बोलते थे मुझे कि भाई साहब हम जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके पीछे पड़े थे, पुलिस उनके पीछे थी, और ये इन सारी चीज़ों को संभाल के अब रखेगा। और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मेरे ज़रूरी कागजात हैं। मैंने देखा नहीं खोल करके, लेकिन हाँ मुझे मालूम था कि उनके जितने ज़मीन के पेपर थे, जो कुछ था कागजात, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलें, सब कुछ था, वो उन्होंने लपेट के रख दी। हमें करीब 3 या 4 महीने उसकी देखभाल करनी पड़ी। हमें मालूम है कैसे हमने देखभाल करी। रात में 2 बार 3 बार उठ कर देखता था मैं कि मेरी चारपाई के नीचे है या नहीं है, मेरे पास कोई और जगह थी नहीं है हमारे पास रखने के लिए, और चारपाई के नीचे कमरे में छुपा के रखते थे हम उसको, कहीं कोई ले तो नहीं गया कहीं को। क्यों? किसी की धरोहर थी, वो हमारे हाथ में थी और हमको देखभाल करना था। अगर वो चोरी होता, कुछ हो जाता, क्या होता, हम कैसे उत्तर देते? हम रिस्पॉन्सिबल थे। और जब भी मैं देखभाल करनी बात आती है, मेरे सामने ये सीन आ जाता है, मुझे मालूम है वो 3 महीने 4 महीने हमने कैसे व्यतीत करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको कौन सी धरोहर दिया है? वो कह रहा है जो धरोहर तुझे दी है, वो उद्धार की जो धरोहर है, आनंद जीवन के धरोहर है, पापों की क्षमा की जरूरत है, वो कीमती है, बहुमूल्य है, उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता, हम नहीं चुका सकते, बहुत कीमती बहुमूल्य है, उसको परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और पौलुस कह रहा तिमोथियुस को, तिमोथियुस ये तुझे मिला है, अनंत तुझे, अनंत जीवन तुझे मिला है, धार्मिकता तुझे मिली है, विश्वास तुझे मिला है, ये चीज तुझे मिली है, परमेश्वर का प्रेम तुझे मिला है, परमेश्वर की क्षमा तुझे मिली है, इस धरोहर को जो तुझे सौंपी गई है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर आएगा, और जब आएगा तो जो कुछ सौंपा गया है उसका तुझसे लिखा लेगा। जो चीज सौंपी जाती है उसका हमें प्रत्युत्तर देना पड़ता है। आज आपके बारे में क्या है, आप क्या सोचते हैं, कौन सी चीज की आप रक्षा कर रहे हैं? जब घर से आप निकलते हैं, घर में ताला लगाते हैं, बुरा नहीं है, हम ऐसे संसार में रह रहे हैं, तब घर वाले कहते हैं, अच्छा भैया तुमने वो चीज संभाल कर रखी ना, अच्छी तरह से बंद है, अलमारी में बंद है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्यों? आप निश्चित होना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है, और जब वापस जाए तो आपको सुरक्षित मिले। कितना अधिक मैं और आप प्रयास करते हैं कि मेरा विश्वास, आपका विश्वास, मेरा धार्मिकता का जीवन, आपका धार्मिकता का जीवन, मेरा पवित्रता का जीवन, आपका पवित्रता का जीवन, ये धरोहर आनंद जीवन जो परमेश्वर दिया है वो सुरक्षित पाया जा सके, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं? हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर का सम्मान करने में, कितना अधिक हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं? मेरे प्रियो, 2000 साल पहले पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा था कलीसिया के लिए, आज भी मेरे और आपके लिए वो वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है। और जब पौलुस तिमोथियुस की पत्री को समाप्त कर रहा है, इस कलीसियाई पत्री को, तो बहुत सुंदर से, पहले पत्री को तो बहुत सुंदर से उन सारी चीजों को लेकर के सामने ला रहा है कि तेरे हाथ में एक सच्चा सुसमाचार सौंपा गया है, तेरे हाथ में एक सच्चा उद्धार सौंपा गया है, तेरे हाथ में सच्चा आनंद जीवन सौंपा गया है, तेरे हाथ में सच्चा शिक्षा सौंपी गई है, तेरे हाथ में वो धन जो सच्चा धन है वो सौंपा गया है, वो धन नहीं जो पृथ्वी का धन, वो नहीं, लेकिन जो जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी समाप्त नहीं करता, वो तुझे सौंपा गया है, उसको तुझे संभालना है, उसको तुम्हें। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए चुनौती है, मेरे और आपको सोचना है, क्या उस धन को मैं और आप सुरक्षित रख पा रहे हैं, कितना अधिक उसके लिए प्रयत्नशील है। तब आइए आगे चल के कहता है, जिस ज्ञान को अज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोधी बातों से दूर रहे, उसे स्वीकार करके अनेक लोग विश्वास में भटक गए। अनेक लोग विश्वास से, जो ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान बहुत बट रहा है आज, बहुत बट रहा है, और हम चले चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन से हटकर, यीशु से हटकर, सुसमाचार से हटकर कोई और ज्ञान नहीं है। तब फिर आइए 15 पद में, तब क्या कह रहा है, कौन है जिसने किसने हमें दिया है, किसके सामने कौन आ गया एक दिन संसार में, कौन अब किसके सामने मुझे और आपको खड़ा होना पड़ा है। वो कह रहा है जिसे वो उचित समय पर प्रकट करेगा। कौन है वो? जो परम धन्य है, एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ना तो देखा और ना देख सकता है, उसका सम्मान और प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे। परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा ना कोई देख सकता है, इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। ये परमेश्वर के बारे में। ओ मेरे प्रियो, कितना दुख। और यौना उसके चार अध्याय में पहले पद से जो 11 पद पढ़ा वो परमेश्वर के बारे में। मैंने पहले बताया कि 4 अध्याय में परमेश्वर के बारे में, 5 अध्याय में पुत्र के बारे में, और वही चीजें हैं, वही गुण है। लेकिन किस रीति से वो कह रहा है कि वो कौन है जिसने, जो पहले आ चुका और जो फिर से आएगा और जो न्याय करेगा, वो है जो सच में उस समय पर प्रकट होगा, वो परम धन्य है। पहली चीज हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम जय जयकार करते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, वो परम धन्य परमेश्वर है। प्रश्न यह है, क्या शब्दों और होठों से हम केवल गीत गाते हैं, या हमारा हृदय उसको परम धन्य करके मानता है? हमारे हृदय में, अंशांश में ये वास करता है। आगे जो क्यों कहता है, एकमात्र सम्राट, वो शासक जो शासक संसार का सबसे बड़ा शासक है, एक दिन सारे शासक समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो शासक है जो कभी समाप्त ना होगा। अनंत का सम्राट, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ओ मेरे प्रभु, वो कौन सा वो नाम दे, कैसे उसको नाम मिला? वो फिलिपियों का अध्याय, फिलिपियों में पौलुस लिखता है, दूसरे अध्याय में वर्णन करते हुए, कि जिसने अपने आप को शून्य किया, पिता का आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु सहली, हाँ उसने वो मृत्यु सहली, तब उसके कहता है, और परमेश्वर ने, पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि एक दिन हर एक घुटना झेकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी, यीशु मसीह प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। क्यों? वो आज्ञाकारी हुआ, क्रूस की मृत्यु सही, यातना सही, मेरे और आपको बचाने के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मेरे और आपको अपने आप को धन्य समझना चाहिए, कि फोर्सली नहीं, दबाव के साथ नहीं, आपने उसको स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अगर आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया है और स्वेच्छा से उसको स्वीकार, अपना प्रभु माना है, तो स्वेच्छा से आप उसके साथ और आगे बढ़िए। लेकिन एक दिन वो आएगा जब समय पूरा हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, तब ये जो स्वेच्छा का समय समाप्त कर देगा, तब एक एक मनुष्य जो आज उसका इनकार भी करते हैं, वो भी उसके सामने झुकेंगे और कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। आज वो शायद उसको ठट्टे में उड़ाते हैं, उसका इनकार करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बार बार बात करता हूँ, ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने इस उम्र में, इस आयु में, इस समय में, इस पृथ्वी में मेरे और आप पर कृपा की, कि मेरी और आपको आंखों को खुला, विश्वास उत्पन्न करा, ताकि हम यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर सके, कह सके यीशु आप हमारे प्रभु है, यीशु आप हमारे प्रभु है। तब आगे चल के कहता है, राजाओं का राजा, अमरता का एकमात्र अधिकारी, वो अधिकारी, वो शासक जो अमर है। शासक आए और चले गए, सरकारें आई और चले गए, राजा आए चले गए, जो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक अनंत काल तक का राज रहेगा, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। प्रभु की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, वो है अमरता का। अतः कहता है एक बात अधिकारी, अगम्य ज्योति में निवास करता, अंधकार से उसका कोई वास्ता नहीं है। वो ज्योति जो ज्योति संसार में प्रकाशित हुई, प्रज्वलित थी, जिसने मुझे और आपको ज्योतिमान बना दिया। एक दिन मेरे और आपका हृदय, जीवन, मन, मस्तिष्क सब अंधकार ने घेरा हुआ था, लेकिन उसकी ज्योति द्वारा, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे और आपके मन, हृदय, आंखें ज्योति में हो गई। और वो ज्योति है जो संसार में सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ ज्योति है, और ज्योति में वास करता है, अंधकार में वास नहीं करता। जैसे किसी मनुष्य ने तो देखा है और ना कोई देख सकता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है उसके पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। यौना वर्णन करता है, उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया, इसलिए उसने कहा, जो ये पुत्र को जानेगा वो पिता को जानेगा। पुत्र के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता तक पहुंचते हैं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, ना माता मरियम है, ना कोई गुरु है, ना कोई और जीवन है, ना कोई और चीज है, यीशु मसीह एक ही मध्यस्थ है, एकमात्र मध्यस्थ है, केवल उसी दान। और तो कहता है उसी का सम्मान, उसी का सम्मान प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे। मेरे प्रियो, ये पौलुस तिमोथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है। तिमोथियुस, तूने ऐसे सुसमाचार को प्राप्त किया है, तिमोथियुस तूने ऐसे परमेश्वर को पाया है, तिमोथियुस तूने ऐसी शिक्षा को प्राप्त किया है, और इसलिए इन बातों को जानते हुए तुझे ऐसा सेवक बनना है। तेरी कलीसिया ऐसी कलीसिया होनी है जो सुसमाचार पर आधारित हो, जो सुसमाचार को समझे, जो सुसमाचार को जाने, जो सुसमाचार को अनुसरण करे और जो सुसमाचार का प्रचार कर सके, ऐसी कलीसिया। क्यों? सुसमाचार का स्वामी, सुसमाचार का प्रभु, सुसमाचार का देने वाला अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। ये सुसमाचार उसी का सुसमाचार है, ये सुसमाचार उसी का सुसमाचार है। और कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत आयत है। और इसलिए तब वो अंत में कहता है, अंतिम बात कहता है अलग से 21 पद में, तुम पर अनुग्रह होता रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। कितनी अद्भुत बात है। क्या, क्यों कह रहा है तुम पर? वो कह रहा है तुझ पर नहीं, तुझ शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुझ पर नहीं, वो कह रहा तुम पर, कह रहा तिमोथियुस तुझ पर और तेरे विश्वासी पर, तेरी मंडली पर, तुम पर यह अनुग्रह बना रहे कि तुम उसके सुसमाचार को जानते हुए उसमें स्थिर और दृढ़ पाए जाओ, बने रहो, और क्योंकि उस परमेश्वर को जानो, और जब तक वो ना आए तुम अपने विश्वास को थाम करके उस जीवन को व्यतीत कर सको ताकि उसके सामने तुम खड़े हो सको। धन नहीं, वैभवता नहीं, संसार की सारी चीजें नहीं, वस्तु नहीं तुम्हारे लिए प्राथमिक हो, लेकिन परमेश्वर, परमेश्वर की प्रभुसत्ता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारी हो, तुम्हारा जीवन हो। और इस तरह से क्या क्या वो पूरी तिमोथियुस की पुस्तक को, पहले पत्र को समाप्त करता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन्होंने, परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम इसको कुछ सीख सके। बहुत कुछ है जो उस पर छिपा हुआ है, जिस पर हम नहीं व्याख्या कर सके, लेकिन मुख्य बात क्या है, प्रश्न है कि आज क्या मेरे और आपके जीवन में सच्चे सुसमाचार की बुलाहट है, भूख है, प्यास है, लालसा है, और इस संसार में इस तरह से जीना हमने सीखा या सीखना चाहते हैं, ये सीख रहे हैं कि हमारा जीवन आनंद के लिए हो सके। ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी नहीं है, ये घर हमारा घर नहीं है, ये घर हमारा घर नहीं है। जब हमने सेवा आरंभ करी, कई साल तक मैं सेवा बनाया, लेकिन जब प्रभु ने हमें इस योगी बनाया कि हम धीरे धीरे करके भवनों का निर्माण कर सके, भवनों का निर्माण कर सके, जितनी भी डिजाइन की, जितनी भी डिजाइन सेवा संबंधित प्रॉपर्टी है, एक भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं लिया, मेरे नाम पर नहीं। क्यों नहीं? इस पृथ्वी पर हमें किंगडम नहीं स्थापित करनी, हमें अपने बाल बच्चों की भी चिंता नहीं। प्रभु का धन्यवाद, हमारे बाल बच्चों ने अपने आप जो कुछ करना था करार कर रहे। अब चिंता मतलब नहीं कि मतलब हमारे दीवाने नहीं, पागल नहीं है, ये वो नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, इसलिए प्रभु ने आशीष दी। मैं आपको नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रभु जो करता है अच्छी बातें कर सके, लेकिन आपके हृदय में, आपके जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, आपके जीवन में इच्छा परमेश्वर होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कभी संसार से हम चले जाए, कभी संसार चले जाए, लेकिन जब खड़े हों उसके सामने, काश मैं और आप उसके मुंह से सुन सके, शाबाश शाबाश मेरे विश्वासयोग्य बेटे और बेटी, दास और दासी, तो थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकार ठहरा। मेरे प्रियो, क्या सच में तिमोथियुस की पत्री को पढ़ते हुए, पिस्तल को पढ़ते हुए, सीखते हुए, क्या मेरे और आपके अंदर कोई ऐसी नई प्रेरणा उत्पन्न हुई है? हम प्रभु से कहने तैयार हैं, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उसके अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बढ़ा सकूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।